हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 32। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचना पड़ेगा और इसके लिए हमारा एकमात्र सहारा गुरु और गौरंग की कृपा है। तो कृपया पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हृदय से समस्त भौतिक विचारों और बुद्धि से भौतिक आसक्ति का परित्याग करके मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्व परान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन् वीतं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गारंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता माते की जय हो। परम सौभाग्य है कि हम श्रीमद् भगवत गीता के इस अमृत रूपी वचनों का पान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। शास्त्र कहता है इस कलयुग में, यह कलयुग जो कलह प्रधान युग है, उसके सारे पापों से उद्धार करने का केवल और केवल एकमात्र साधन है भगवान के कथा का श्रवण करना, भगवान के वचनों का श्रवण करना। केवल इसी से इस कलयुग के समस्त पापों का क्षय हो सकता है। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 16 में वेदव्यास कहते हैं, कोवा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य, यानी कि ऐसा कौन हो सकता है, मन हे भगवान हे कृष्ण, ऐसा कौन हो सकता है जो कि इतनी सुंदर भगवान की कथाओं को श्रवण करना नहीं चाहेगा। मतलब कितना दुर्भाग्य होगा उस मनुष्य का जिसको भगवान की कथा में रुचि नहीं होगी। वो कौन होगा जो इतना इजीली, इतना आसान है कलयुग के समस्त कष्टों का निवारण, इतने दुखों का निवारण हम सब कुछ कर क्यों रहे हैं, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, अपने कष्टों का निवारण करने के लिए कर रहे हैं। तो 88,000 ऋषि मुनि मिलकर सूत गोस्वामी को कहते हैं कि ऐसा कौन होगा इस कलह, ऐसे बता शुद्धि शुद्धि कामो न शुणात। शुद्धि कामो मतलब जो समस्त पापों से, जो समस्त पापों से उद्धार की इच्छा करता है, जो अपने समस्त कष्टों को दूर करता है, करने की इच्छा है, शुद्धि काम है उसको, न शुणात, उसको इच्छा है कि मैं अपने समस्त कष्टों का निवारण करूं। और तो फिर ऐसी कौन सी बेवकूफी करेगा कि वो भगवान की कथा ना सुनेगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त तो कोई उपाय लिखा हुआ नहीं है शास्त्र में, केवल श्रवणम कीर्तनम, उसी से आपके समस्त कष्टों का निवारण होगा। तो सूत गोस्वामी कहते, सूत गोस्वामी को 88,000 ऋषि क्या कहते हैं, को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेद्य कर्मण। वो कौन बेवकूफ होगा जो भगवान के इन अमृत रूपी वचनों को श्रवण करना नहीं चाहेगा। शुद्धि कामो न शुणात यशः कलिमलापहम्। ऐसा इस कलह प्रदान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भगवान के पुण्य यशों को, भगवान के पुण्य श्लोकों को, भगवान के इन अमृत रूपी वचनों को श्रवण करना नहीं चाहेगा। तो शास्त्र उस मनुष्य को बेवकूफ कहते हैं जो भगवान की कथा में रुचि नहीं रहते हैं और अपने दुखों के, कष्टों के निवारण के लिए कोई और तरीका ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि जब तक आप भगवान की कथा में रुचि नहीं होगी, जब तक आप श्रवण करने में आसक्ति आपकी उत्पन्न नहीं होगी, तब तक आपके अपराधों का क्षय नहीं होगा, और जब तक अपराधों का क्षय नहीं होगा तब तक आपके कष्टों का निवारण, क्योंकि कष्ट क्यों मिल रहे हैं, अपराधों के कारण मिल रहे ना, लेकिन जब तक आपके अपराध क्षय नहीं होंगे, जब तक आप श्रवण नहीं करोगे, क्योंकि श्रवण करने के बाद ही कीर्तन में रुचि उत्पन्न होती है। तो आप सबका बहुत बहुत परम सौभाग्य है कि आप सबके हृदय में भगवान की कथा को श्रवण करने का इतना उत्साह है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 32, 33, 34 और 35 जो कि एक साथ लिखे हुए उनको पढ़ेंगे। हम अभी पढ़ रहे हैं अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन के हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया, अर्जुन के हृदय में दुख उत्पन्न हुआ। क्यों हुआ? श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं यह दुख देहात्म बुद्धि के कारण है, क्योंकि वो क्यों दुख कर रहा था, अपने स्वजनों के मारे जाने की वजह से, कि यहाँ पर युद्ध होगा और मरेंगे सब मेरे कारण, या फिर युद्ध के कारण मरेंगे, तो फिर उसको दुख हो रहा था बहुत। इसी वजह से इस युद्ध के समय में इस विषाद से प्रेरित होकर अर्जुन भगवान के साथ अपना योग बना रहा है। और इस योग, ये जो योग है ना, चाहे कृष्ण के साथ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 7 चैप्टर में 7.16 भगवान कहते हैं, चतुर्वेधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत शभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्य आत्मा मेरे शरण में आते हैं, आर्त यानी दुखी, यानी दुखी होकर आते हैं, जिज्ञासु अर्थाति तथा ज्ञानी। भगवान ने चार प्रकार के बताए, और अभी हम अगर देखते हैं तो अर्जुन जो है वो आर्त स्थिति में भगवान की शरण में आया है, और भगवान ने उन लोगों को जो भगवान की शरण में आते, भले वो आर्त स्टेज स्थिति की वजह से आते हैं, लेकिन भगवान ने उन्हें पुण्य आत्मा कहा है कि वो पुण्य आत्मा है कि वो अपने दुख को लेकर मेरे पास आए हैं। उनके पुण्य एकत्रित हम यदि किसी भी कारण से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, चाहे वो कोई भी कारण हो, तो समझो हमारे पुण्य उदय हो गए हैं, जो हमारे हृदय में हमारी बुद्धि इतनी संतुलित है कि हमें डायरेक्ट से उसके पास भेज दिया जो कि वाकई में हमारे दुखों का निवारण कर सकता है। वरना संसार में तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित् यतति सिद्धये यतदाम अपि सिद्धानाम कश्चन माम वेति तत्तथ। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उनमें से भी कोई एक ही ऐसा है जो मेरी शरण में आता है। तो आप सबका बहुत बहुत सौभाग्य है कि आप डायरेक्ट से भगवान श्री कृष्ण की शरण में लिए हैं, किसी और झंझट में नहीं फंसे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का पिता हूँ। तो अर्जुन आज भगवान की शरण में है और भगवान से कह रहे हैं चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 32 कृपया मेरे साथ श्लोक का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अर्जुन कहते हैं किम नो राचीन गोविंद किम भोगैर्व जीवितेन वा येषामर्थि कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। फिर से किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थि कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रः तथैव च पितामहाः मातुलः श्वशुराः पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हतो किं नु मयि कृते निहत्य धातृराष्ट्रान् का प्रीति स्याज्जनार्दन। कैसे किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थि कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुराः पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदना। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतुः किं नो महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रानः कापीति साजनार्दन। किमनो राजेन गोविंद, ये बोल रहे हैं अर्जुन, किमनो माने क्या लाभ है राजेन, राज्य का गोविंद, यानी कि ये गोविंद ऐसे राज्य का क्या लाभ है। किम भोगेर जीवते, किम माने क्या क्या लाभ है, भोगेर यानी भोगने का, जीवते यानी जीवित रहने के लिए, यानी जीने के लिए। अब जैसे अर्जुन को राज की जरूरत थी, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था उसको याद राज, लेकिन फिर भी वो अर्जुन कह रहे हैं किम नो राजेन गोविंद किम भोगेर जीवते, यानी कि जिंदा रहने के लिए ऐसे राज की क्या आवश्यकता है। येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, येषाम का मतलब होता है जिनके जिनके लिए, जिनके लिए मैं इच्छा करता था, यानी कि हम कोई भी चीज चाहते ना किसके लिए चाहते हैं। अगर आप अच्छा लगते हो ना, कभी अच्छा पहन के आते हो या अच्छा दिखते हो, तो आप क्या चाहते हो कि जो मेरे अपने हैं वो मुझे अच्छे कमेंट्स दें ना, कि कितना अच्छा है, देखो ये अच्छा बच्चा है, उसने अच्छा कार्य, एकदम छोटा बच्चा भी होगा ना अच्छा काम करेगा तो क्या सोचेगा कि मम्मी पापा मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैंने कितना अच्छा किया। वो आके बताएगा देखो मैंने कितना अच्छा ड्रॉइंग किया या मैंने कितना अच्छा ये प्रोजेक्ट बनाया या कुछ। तो अर्थ क्या है, मतलब आप क्यों अच्छा कर रहे हो, ताकि आपके जो बड़े हैं वो आप देख के आपसे प्रसन्न हो, इसे करते ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अर्जुन, ये शाम अर्थी कांक्षितम नो राजम भोगा सुखानी च, कि जिसके जिनको खुश करने के लिए, जिनको सुखी करने के लिए हम ये राज्य चाहते थे, वो कौन थे। इमे वस्थिता युद्धि प्राणम त्यक्ता धनानी च, वही सारे लोग, कौन सारे लोग, जिन जिनके लिए हम ये सब राज और सुख चाहते थे, वो सारे लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं। ते इमा वस्थिता युद्ध, युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं, और प्राणस त्यक्ता धनानी च, और अपने समस्त धन और प्राण को त्यागने के लिए खड़े हुए। कौन कौन खड़े हुए आगे बता रहे, आचार्य पुत्र पित्र तथा च पितामह, आचार्य यानी उनके गुरुजन, उनके पितृजन, उनके पितामह भीष्म भी, और मातुला श्वसुर, जो मातुला यानी कि उनके मामा लोग, पितरा मतलब उनके पितृ के बराबर, पिताजी के आयु के सारे जो पिता तुल्य हैं, और पुत्रा जो बेटों के जैसे हैं, जो बाप के जैसे हैं, जो पितामह के जैसे हैं, मातुला श्वसुरा पौत्रा, श्वसुरा का मतलब होता है ससुर, जो मेरे ससुर वगैरह हैं सारे, जिनके साथ है ना, ससुर के भी रिलेटिव सारे जितने भी हैं वो भी ससुर जैसे होते ना, और पौत्रा यानी पुत्रों के पुत्र, स्याला मतलब साले, संबंधित जितने भी रिलेटिव्स हैं जिनके लिए हम चाहते थे कि वो जब हमें सुखी देखें तो उनको खुशी मिलेगी, हम हमें अप्रिशिएट करेंगे वो जब भी हम ना कोई अच्छा कार्य करें, वो सब तो यहाँ पर अपने प्राण और धन त्यागने के लिए खड़े हुए हैं। तो एतान हन्तुम इच्छामि ज्ञातोपि मधुसूदन, यहाँ पर अर्जुन अपनी एक बात बता रहे हैं, एतान मना यहाँ पर जो खड़े हुए ना सारे, ये सब न हन्तुम इच्छामि, मुझे दिल ही नहीं कर रहा है, इच्छा नहीं हो रही है उनको मारने का, न हन्तुम यानी उन मुझे दिल ही नहीं कर रहा है, मैं इनको मार के राज करूं, यानी कि कितना दुख की बात है कि जिनके लिए मैं चाहता हूँ कि वो मुझे अप्रिशिएट करें, जो मुझे राजा देखकर खुश हो, उनको मार के मैं राज करूं। एतान हन्तुम न इच्छामि कृष्ण, ए गोविंद, एतान हन्तुम इच्छामि ज्ञातोपि मधुसूदन, हे मधुसूदन, इनको मारने का तो मुझे बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा है। और आगे बढ़ते हैं, अपि त्रैलोक्य राजस्य हतो किम नो महि कृतम, त्रैलोक्य राजस्य, यहाँ तक कि यदि मुझे तीनों लोक का राज्य प्राप्त हो जाए, हतो यानी विनिमय में किम नो किस प्रकार, क्या प्रीति सा जनार्दन, ही जनार्दन, कितना सुंदर अर्जुन ने कहा है, जो सेकंड लास्ट लाइन है ना इन श्लोक्स की, अपि त्रैलोक्य राजस्य हतो किम नो महि कृते, अपि त्रैलोक्य राजस्य मना ये तीन लोग का राज्य भी यदि मुझे मिल जाए हतो किमनु महिकृते, मैं तभी भी ये युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। एतान हंतुम न इच्छामि घनतो भी मधुसूदन, मैं मधुसूदन में युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, इनको मारना नहीं चाहता हूँ। इवन बलि मुझे तीनों लोगों का राज्य क्यों ना मिल जाए, किमनु महिकृते, फिर मैं सिर्फ एक पृथ्वी के राज्य को प्राप्त करने के लिए इनकी हत्या करने का कैसे सोच सकता हूँ। भगवान को अर्जुन कितना अच्छे तरीके से, बिल्कुल हृदय को एकदम खोल के रख दिया भगवान के सामने, कितना साफ तरीके से भगवान के सरेंडर हुआ है कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा है, तीनों लोगों का राज्य भी यदि मुझे मिल जाए फिर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, क्योंकि इनको तो खुश करने के लिए मैं सब कुछ करता था जो भी अच्छा कार्य, आज इनको मार कर मैं यह पृथ्वी का राज्य क्या, मैं अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं उन्हें नहीं मारना चाहता हूँ। और आगे बोला, निहत्य धृतराष्ट्रान का प्रीति सा जनार्दन, बोला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर का प्रीति, मतलब मुझे कोई प्रसन्नता मुझे लग ही नहीं रहा है कि मुझे कोई सुख प्राप्त होगा इनको मारकर। अनुवाद देखिए, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम इन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पौत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिल जाएं, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए, भले धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर भला हमें के कौन सी प्रसन्नता प्राप्त होगी, हमें कोई धृतराष्ट्र के भले पुत्र अपराधी हैं लेकिन फिर भी वो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे संबंधी हैं, इनको मार कर हमें कोई सुख तो प्राप्त होने वाला नहीं है, तो फिर मेरी कोई इच्छा भी नहीं हो रही है उनको मारने की। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। यहाँ पर कहाँ बोला अर्जुन ने गोविंदम, किम नो राजी न गोविंद, गोविंद का क्या मतलब होता है, गौ का मतलब होता है इंद्रियां और विंद का मतलब होता है प्रसन्न करने वाले, गौ का मतलब होता है गौवा गौवे और विंद का मतलब होता है प्रसन्न करने वाले, यानी कि जो गौवों और इंद्रियों दोनों को प्रसन्न करने वाले हैं। और एक और होता है, गौ का मतलब होता है संसार, ये गौ ये जो होता है ना पृथ्वी पूरी, और विंद का मतलब होता है प्रसन्न करने वाले, जो पूरे संसार को, पूरी पृथ्वी को, पूरे समस्त लोकों को प्रसन्न करने वाले हैं, उनका नाम है गोविंद। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। क्यों अर्जुन ने गोविंद बोला, क्योंकि पहले से क्या बोला था कि मुझे 29 और 30 में हमने पढ़ा ना श्लोक में, क्या बोला था अर्जुन ने, वे पदुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संस्रते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सिरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ पर और अधिक खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण नजर आ रहे हैं, यानी उसकी स्थिति ऐसी थी जिसमें केवल दुख नजर आ रहा था उसको, और यहाँ पर गोविंद कहकर बुलाया कि नोराजी न गोविंद। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन कृष्ण को संकेत करना चाहता है कि आप तो गोविंद हो, तो आप मेरी इंद्रियों को प्रसन्न करो। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सीक्रेट बात यहाँ पर बताने वाले हैं, गौर से सुनो। किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। गोविंद का मतलब ये नहीं है कि वो गोविंद है तो उसको बोलो कि कृपा कृपा करो, मेरी इंद्रियों को खुश करो, आप गोविंद हो, आपका कर्तव्य है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गोविंद बने हो तो हमें खुश करना चाहिए। लेकिन श्री रूपा जी आपको ये बताना चाह रहे हैं, हमें हम सबको ये बता रहे हैं, गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती है। यानी ये डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्टली होगा। आपको क्या करना है? भगवान को खुश करना है। जब आप भगवान की इंद्रियों को खुश करने का प्रयास करोगे तो फिर हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट हो जाएंगी। जैसे मैं अक्सर आपको खाने का उदाहरण देती हूँ कि यदि शरीर की समस्त इंद्रियां पेट के अंदर अनाज डालेंगी तो बाकी सारी सारी इंद्रियां स्वतः प्रसन्न हो जाएंगी। इसे बोलते हैं, शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवतम में आता है, प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युते च। जिस तरह आहार आप आमाशय को देते हो, आप पेट में धारा डालते हो और सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार यदि आप भगवान को खुश करते हो तो क्योंकि आप भगवान के अंश हो तो स्वतः ही आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। स्वयं अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने से कभी सुखी नहीं होगी। तो ये सीक्रेट बताया श्री प्रभुपाद ने। आगे कहते हैं, भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसकी आज्ञा पालक की तरह काम करे। हम सब क्या चाहते हैं? भगवान को बोलते हैं, भगवान मेरी प्लानिंग कर दी है, आप खाली उसको अप्रूव कर दीजिए, नीचे साइन कर दीजिए कि इतने घर, इतना बड़ा मेरा घर होना चाहिए, इतनी गाड़ी होनी चाहिए, इतने बच्चे होने चाहिए, ये लड़की के साथ शादी हो जाए, बस फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है मेरे बारे में। मैंने प्लानिंग कर दी है, मैंने पूरा जो है ना फ्यूचर प्लान कर दिया है, आपको खाली क्या करना है, उसको आपको कार्य करना है, उसके लिए आप एज अ सर्वेंट मेरी सेवा करो, मैंने तुम्हें जो जो काम बता दिया वो करो। और फिर क्या होगा, मेरे यहाँ पर देखो श्री प्रभुपाद ने कहा, मैंने कह रही हूँ, भगवान के श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, चाहता क्या है कि मेरी इंद्रिय तृप्ति हो और मेरे सेल्फ जो है ना वो सेटिस्फेक्शन हो, सारा मैं खुश हूँ, और चाहता क्या है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक, भगवान नौकर की तरह जो जो मैं बोलता जाऊं, भगवान सुख संपत्ति कर आए कष्ट मिटे तन का, मुझे सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, मेरे जो रोग है उनको खत्म कर दो, तुम एक नौकर की तरह मेरी सेवा करो और आज्ञा का पालन करते रहो। लेकिन किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं। आप जितना डिजर्व करते हो भगवान आपको उतना ही देंगे। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी समस्त योगक्षेम का मैं वहन कब करूंगा, जब तुम मेरी शरण में आओगे, फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं, फिर आप कितना डिजर्व करते हो वो नहीं देखेंगे, आपका भजन देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर श्री पप्पा जी बोलते हैं, भगवान ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना के वे चाहते हैं। आप चाहते क्या हो? हर कोई मनुष्य क्या चाहता है कि संसार में सबसे ज्यादा सुखी मैं हूँ, लेकिन आपको वही उतना ही मिलेगा जितना कि आपके भाग्य में होगा, जितना कि आप लिखवा के आएंगे, जितने कि आपने पुण्य अर्जित किए होंगे, जितना कि आपने भगवान को संतुष्ट किया होगा, उतनी ही संतुष्टि आपको प्राप्त होगी। किंतु जब कोई, बहुत ही अच्छी बात है, गौर से सुनिए, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, विपरीत माना देखो, एक तो क्या है कि आप भगवान के सामने जाओ और हाथ फैलाओ भिखारियों की तरह कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, तो आपको कितना मिलेगा? जितना कि आपने आप डिजर्व करते हो, जितना कि आपने अच्छे पुण्य कर्म किए उतना आपको मिलेगा। किंतु जब कोई विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, विपरीत माना अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों की चिंता तृष्टि की चिंता करता है, गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, भले वो उसको डिजर्व करता है या नहीं करता। समझ में आ रही है बात? आप अगर अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान आपको उतना ही देगा जितना कि आप डिजर्व करते हो, जितने कि आपके कर्मों के अनुसार आपके भाग्य में लिखा। लेकिन यदि आप भगवान की भक्ति करते हो, यदि आप भगवान की सेवा करते हो, यदि आप भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा और प्रयास करते हो, तो गोविंद की कृपा से, वो कृपा है, वो आपका भाग्य नहीं है जो भगवान दे रहा है। भगवान जब कृपा करते हैं जीव पर तो जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर बात बताई, यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण था। यानी कि अर्जुन के हृदय में बहुत उनके लिए करुणा थी, दुख हो रहा था, इसलिए वो ऐसा कह रहा था कि मैं नहीं लड़ना चाह रहा हूँ, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है। यानी कि आपके पास जो भी है वैभव है, जो भी आपके पास अच्छा है, यानी कि जो भी आपको दिखाने वाला, वो आप चाहते हो कि मेरे मित्र देखें, मेरे परिजन देखें, मेरे संबंधी देखें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। यानी कि फिर मेरे पास अगर बहुत सारा धन हो जाए, इतना सब कुछ मुझे प्राप्त हो भी जाए, तो भी क्या फायदा, क्योंकि मैं उनको तो दिखा ही नहीं सकूंगा जिनको दिखाना चाहता हूँ। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, यानी सिंपल ये लाइफ है। सब क्या चाहते हैं कि अपनों को दिखाएं और खुश करें, किंतु आध्यात्मिक जीवन इसके सर्वथा विभिन्न है। अब यहाँ पर भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को श्री प्रभुपाद जी हमें अच्छी तरह से समझाए कि ये सब भौतिक जीवन में होता है कि ये मेरा है, मैं इसको खुश करना चाहता हूँ, ये इससे घृणा करता हूँ ये, लेकिन आध्यात्मिक जीवन भिन्न है। वो कैसे है? आध्यात्मिक जीवन में क्या होता है, चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार करता है। किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। यानी कि कितना अच्छा बता रहे श्री बाबा जी, कह रहे हैं कि अगर भगवान की इच्छा है, आपको दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भक्त बोले भाई नहीं मैं तो भगत हूँ, मैं तो धन नहीं अर्जित कर सकता, मैं एसी वाले रूम में नहीं बैठ सकता, मैं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूम सकता, मैं तो भक्त हूँ, मुझे ये सब नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर श्री बाबा जी देखो कितना अच्छा बता रहे हैं कि भक्त को ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए और ऑलराउंडर होना चाहिए। ये नहीं कि आप संकुचित नहीं हो सकता, भक्त सीमित, उसकी उसकी इच्छा काल क्या होती है? प्रभुपाद जी बोलते हैं चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, जो भगवान तुम्हें अच्छा लगता ना वो मुझे दो, अगर तुम्हें दुख अच्छा लगता है तो दुख मुझे दो, अगर तुम्हें सुख अच्छा लगता है तो सुख मुझे दो। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार करता है। जो कुछ संसार में उसको प्राप्त हो रहा है वो सब ऐश्वर्यों को स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि इससे वो भगवान की सेवा करेगा। यदि नौकर रखेगा, गाड़ी रखेगा, बंगलों का अच्छा, तो अच्छा प्रचार होगा, अच्छी सेवा कर सकेगा वो। और अगर सारा दिन वही मतलब वो नहीं स्वीकार करेगा, भगवान ने उसको दिया है फिर भी स्वीकार नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा कि वो इतनी अच्छी तरह से भक्ति को टाइम नहीं दे सकेगा। भक्त तो भगवान की इच्छा के लिए सब कुछ स्वीकार करता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो उसके लिए परेशान नहीं होता, वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। वो ऐसे नहीं करता कि नहीं मुझे ये करना है ये करना है, जो भगवान ने मुझे खुश होकर दिया है उसी में संतुष्ट है, यही भक्ति है। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनको वध कर दे, मेरे को नहीं मारना है। कि यहाँ पर अर्जुन ने बोला था ना कि एतान न न हंतु मिच्छामि ज्ञातोपि मधुसूदन। आप क्योंकि मधुसूदन हो वैसे राक्षसों को मारते रहे, तो आप ही मार दो ना, खाम का मुझे क्यों बीच में डाल रहे हो। तो उसकी इच्छा ये थी कि अगर मारना अनिवार्य है तो कृष्ण आप ही मार दो। आगे श्रील प्रभुपाद जी एक और सीक्रेट के विषय में बताएंगे जो भगवान श्री कृष्ण हमें 18वें अध्याय में डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस समय कब, अभी तो भगवद गीता स्टार्ट की ही नहीं हुई है, तो ये जो टाइम है जब तक युद्ध नहीं स्टार्ट हुआ है, इस समय उसे यह पता नहीं था कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में मारने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनाना चाहते हैं, अर्जुन को खाली श्रेय देना चाहते हैं। भगवान की करुणा है कि वो करते स्वयं है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कृष्ण ने सारा कार्य पहले से कर लिया था, ये सिर्फ अर्जुन अपने मित्र को, अपने भक्त को, अपने प्रिय सखा को ये श्रेय देना चाहते थे, निमित्त बनाना चाहते थे। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा, यानी कि आगे जब हम पढ़ेंगे ना 18वें अध्याय तक, तो ये सब बता देंगे भगवान। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधुओं से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि इस सब का वध हो। यानी कि वो भले भगवान का भक्त है और भक्त के अंदर विनम्रता करुणा होना स्वाभाविक है, वो नहीं चाहता था, लेकिन भगवान की योजना, कृष्णास प्लान्स आर मोर बेटर देन माय ड्रीम्स। भक्त हमेशा सोचता है कि कृष्ण आपने जो प्लान किया होगा वो ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्वाबों का। क्या है वो तो कुछ समझ आता नहीं, बुद्धि है नहीं, तो मैं उल्टे सीधे ख्वाब देखता रहता हूँ, लेकिन तुमने जो प्लानिंग की है वो हमेशा बेहतर होती है। और भगवत भक्त भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते हैं, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर सकते। यानी जब भक्त भक्त के ऊपर कोई दुष्ट अगर दुख देता है उनको, तो भगवान से वो बर्दाश्त नहीं होता और भगवान उनको कभी भी माफ नहीं करते हैं। भगवान से ये कभी बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति उनके भक्तों को दुख पहुंचाए। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, जरूर कोर से सुनो। यहाँ पर क्या लिखा है, श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, यानी कि अगर उसने कोई बड़े से बड़ा अपराध भी किया होगा, इवन भगवान के चरणों में भी यदि अपराध किया होगा तो भगवान उन्हें क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो उसे कभी क्षमा नहीं करते हैं। भगवान के भक्तों को कभी भी हमें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, कभी भी भक्तों के साथ विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान से बर्दाश्त नहीं होता और भगवान उन्हें कभी भी माने करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था, क्योंकि इन सारे दुष्टों ने, दुर्योधन इत्यादि जितने भी थे, उन्होंने भगवान के भक्तों को दुख पहुंचाया था और भगवान उन्हें किसी सूरत में माफ नहीं करने वाले थे, बल्कि अर्जुन उन्हें माफ करना चाहते थे, लेकिन भगवान उनको अवश्य सजा देंगे और अर्जुन के इस मोह को खत्म करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।